गोपी परण धन मदन मनोहर गोपी परण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना कालिया दमन विधाना अमल हरि नाम अमिय अभिलाषा अमल हरि नाम अमिय अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नागर भर विपिन पुरंदर नवीन नागर भर वंशी वदन सुवाता वंशीवदन सुभाषा ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तत्कर गोविंद माधव नवनीत तत्कर सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपा माया रास रसिक कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोदाश्रय यशोमती ನಂದನ ಬ್ರಜ ಬರನಾಗರ ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧೆ ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ 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 ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম ইয়ে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীচৈতন্যমনোবিষ্টম স্থাপিতম ইয়েন ভূতলে স্বয়ং রূপ সদা মহ্যম দদাতি স্বপ্রকাশিতম বন্দেহম শ্রীগুরুঃ শ্রীযুতপদকমলম শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপম সাগ্রজাতম সহগররঘুনাথান্বিতম সরস্বতীতম সাদ্বৈতম সাবধূতম পরিজন সহিতম কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রীরাধা কৃষ্ণপাদাম সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাম বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ নমো মহাবদানায় কৃষ্ণভ্যুৎপদায় তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরদৃশে নমঃ হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমোস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিত্রিয়ে জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাচার্য গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ। তো আপনে সে কতনে লোক পহলি বার বৃন্দাবন আয়ে হ্যাঁ হাত উপর দিজিয়ে কই হ্যাঁ অনেক তো আশা করতে হ্যাঁ কি আপ বার বার ইহা আতে রহে। বৃন্দাবন কি বিশেষতা ক্যা হ্যাঁ? বৃন্দাবন কি বিশেষতা ইয়ে হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ভূমি হেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ভূমি নই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাজ ঘর হ্যাঁ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাজ নিবাস স্থান হ্যাঁ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान निवास नहीं करते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, ब्रह्मांड की आत्मा है भगवान। भगवान की उपस्थिति के कारण ये ब्रह्मांड चल रहा है। हर एक ग्रह के अंदर हर एक लोक के अंदर भगवान है जो उस लोक को चला रहे हैं। राम आवश्यक भूतानी धारयामी अहम ओजसा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हरेक लोक या ग्रह के भीतर प्रवेश करके वो उस लोक को संचालित करते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो हरेक प्राणी के हृदय में विराजमान है। ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদয়েষু অর্জুন তিষ্ঠতি রামায়ণ সর্বভূতানাম যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া। হরেক প্রাণী কে হৃদয় মে ভগবান স্থিত হ্যাঁ, না কেবল মনুষ্য কে হৃদয় মে, পশুও কে হৃদয় মে, পক্ষীয় কে হৃদয় মে, সব কে হৃদয় মে ভগবান স্থিত হ্যাঁ। ইহা তক কি ভগবান হরেক অণু মে স্থিত হ্যাঁ। अन्नांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु के भीतर भी भगवान स्थित हैं और भगवान की उपस्थिति के कारण अणु भी चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उद्गम भगवान है। हर एक ब्रह्मांड के भीतर भगवान है जो ब्रह्मांड को चला रहे हैं। हर एक लोक के भीतर है, हर एक प्राणी के भीतर है, हर एक अणु में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है। जब हरेक कण में, कण कण में, अणु अणु में भगवान निवास करते हैं तो ये सब भगवान के निवास स्थान हो जाते हैं। तो फिर ये वृंदावन किस प्रकार से विशेष स्थान कहलाता है? हमने जब कहा कि भगवान का ये निवास स्थान है वृंदावन, वैसे हर एक अणु भगवान का निवास स्थान है, हम सबका शरीर भगवान का निवास स्थान है, सारा ब्रह्मांड भगवान का निवास स्थान है। तो इसमें वृंदावन की क्या विशेषता रही, ये प्रश्न निर्माण होता है ना, तो वृंदावन ही क्यों? आप में से कौन बताएंगे, आप में से जो पहले आ चुके हैं वृंदावन? अगर भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान हर जगह निवास करते हैं, तो हर स्थान भगवान का निवास स्थान है, तो फिर वृंदावन ही क्यों, वृंदावन को इतना महत्व हम क्यों देते हैं, कौन बताएंगे? हाँ, भगवान ने यहाँ पे लीलाएं की, ठीक है, परंतु लीला मतलब क्या है बताइए? भगवान अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं वो लीला है, ठीक है। अब लीला इस शब्द का विश्लेषण यहां से आगे हम बढ़ाएंगे, परंतु उसके पहले हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान जो भी कार्य करते हैं उसे लीला कहते हैं। भगवान जब इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों की को निर्माण करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं, इसे भी लीला कहते हैं, ये भी भगवान की लीला है, इसे सृष्टि लीला कहते हैं। वृंदावन में भगवान ने माखन चोरी की लीला की, रास लीला की, गोचारण लीला की, और महाविष्णु के रूप में वो सृष्टि लीला कर रहे हैं, दोनों ही लीला है। जो भी कुछ भगवान करते हैं वो लीला कहलाता है। तो फिर उस लीला में और इस लीला में कोई अंतर नहीं, वो भी लीला है, ये भी लीला है, फिर भी वृंदावन की विशेषता क्या है? देखिए, इसके लिए पहले हम सबसे पहले ये समझें कि लीला शब्द का तात्पर्य क्या है। जब ये बिंदु अपनी मुद्दा सामने रखा जाए कि लीला है भगवान की जो यहाँ वृंदावन में होती है, तो आइए समझ लेते हैं कि लीला क्या है। हम जो भी कार्य यहाँ इस दुनिया में करते हैं वो क्या लीला कहलाते हैं? कहलाते हैं कि नहीं? नहीं। क्या कहलाते हैं? कर्म। तो कर्म और लीला, इन दो शब्दों में अंतर क्या है बताइए, कौन बताएंगे आप? कर्म का फल मिलता है लेकिन लीला का फल नहीं मिलता। भगवान को बड़ा आनंद आता है लीला करने से, वो भी फल है ना? बहुत अच्छा, ये इसी उत्तर के लिए मैं राह देख रहा था। फिर से कहिए, कर्म हम बद्ध अवस्था में करते हैं और इसके विपरीत लीला वो है जो मुक्त अवस्था में की जाती है। बद्ध अवस्था में जो कर्म किए जो कार्य किए जाते हैं उनको कर्म कहते हैं, मुक्त अवस्था में जो कार्य किए जाते हैं उनको लीला कहते हैं। तो हम बद्ध हैं या मुक्त हैं? हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि हम बद्ध हैं? भाई हम तो मुक्त हैं, हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, बंबई जा सकते हैं, जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, अब चाहे तो सो भी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो फिर आप कैसे कहते हो कि हम मुक्त हैं, कौन बताएंगे? आप कह रहे हैं कि हम बद्ध हैं, लेकिन किस तरह से हम बद्ध हैं? क्या प्रमाण है कि हम बद्ध हैं? क्या सबूत है? हाँ, हमारे कार्य किसी उच्च श्रेष्ठ श्रेणी के शक्ति द्वारा नियंत्रित है। हमारे कार्यों के हम स्वामी नहीं हैं पूरी तरह से। अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे। ये आपके नियंत्रण में नहीं है, रास्ते में कहीं आपको ट्रैफिक मिल गया, गाड़ियों का जाम मिल गया तो आप रुक जाएंगे। तो ठीक है, हमारी स्वतंत्रता लेश मात्र है और इस स्वतंत्रता को उपयोग करके हमारी इच्छा को हम इस तरफ या उस तरफ प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जब तक हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम मुक्त हैं? जब ऐसी कोई शक्ति हमें नियंत्रित करके रख रही है तो फिर हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? आप पूछेंगे भी ऐसे कौन सी शक्ति है जो हमें नियंत्रित करके रख रही है? थोड़ा सोचिए। जैसे जैसे आप आईने में चेहरा देखते हैं, आपको क्या दिखाई पड़ता है? कि शरीर जवान होते जा रहा है हर दिन। आपकी जो उम्र 30-40 से ज्यादा है, जब आप आईने में देखते हैं, आपको कहीं कहीं एक आध बार कोई सफेद बाल दिखाई पड़ता है? कोई शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ता है? बुढ़ापा आता है क्या हम चाहते हैं? नहीं। बीमारी आती है क्या हम चाहते हैं? नहीं। मृत्यु आएगी क्या हम चाहते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी मृत्यु आएगी। उसी प्रकार से पुनर्जन्म आएगा, हम नहीं चाहते, फिर भी पुनर्जन्म आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब तक ये 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और ये 4 चीजें हमें बांध के रख रही हैं। भगवद गीता का प्राथमिक उपदेश यही है कि हम आत्मा हैं और हम ये शरीर नहीं हैं। आत्मा अभी शरीर के अंदर है। आत्मा को एक शरीर द्वारा बांध लिया गया है। वैसे आत्मा का स्वरूप है मुक्त होना, भगवान के साथ रहना, भगवान के धाम में। परंतु इस समय शरीर को प्राप्त करके आत्मा को बांध लिया गया है और इसलिए आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, दूसरे शरीर को त्याग कर तीसरा शरीर धारण करना पड़ता है, फिर उस शरीर को त्याग कर और एक शरीर धारण करना पड़ता है। इस चक्र को संसार का चक्र कहते हैं, जन्म मृत्यु रूपी चक्र। और हम में से सभी, चाहे हम मनुष्य हों या पशु हों या पेड़ पौधे हों, हम इस चक्र में घूम रहे हैं, संसार के चक्र में। शास्त्र में वैसे बताया जाता है कि 84 लाख योनियां हैं और आत्मा इन 84 लाख योनियों में घूम रही है, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस ग्रह में, कभी उस लोक में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मुक्त हैं जब पुनर्जन्म लेने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं, जब बूढ़ा होने के लिए, बीमार होने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो कैसे मुक्त हैं? इसलिए इस संसार को भव सागर कहा गया है या भव सिंधु। भव मतलब हो जाना। क्या हो जाना? बूढ़ा हो जाना, बीमार हो जाना, मर जाना, पुनर्जन्म ले लेना। तो ये जबरदस्ती हो रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मुक्त हैं। तो जब ऐसे परिस्थिति में आत्मा को डाला जा रहा है तो फिर आत्मा बद्ध अवस्था में है, ये हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और बंधन का कारण ये भी है कि जब हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म का हमें फल मिलता है, और वो फल जब मिलता है तो उस फल को प्राप्त करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं, और उस फल को प्राप्त करने के लिए हमें पुनर्जन्म भी प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार से हम कर्म बंधन में अटक जाते हैं और कर्म बंधन की वजह से जन्म मृत्यु के बंधन में हम फंस जाते हैं। तो यहाँ इस भौतिक जगत में रह के हम कर्म करते हैं,
कभी कर्मों के अच्छे फल प्राप्त होते हैं, कभी बुरे फल प्राप्त होते हैं, जैसे करनी वैसे भरनी। तो जीव यह भौतिक जगत में रह के नाना प्रकार के कर्म करता है और इन कर्मों के फल उसे प्राप्त होते हैं। तो ये कर्म बंधन है। तो कर्म बंधन में रहते हुए व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। तो जो कार्य ऐसे बद्ध अवस्था में किए जाते हैं उनको कर्म कहते हैं। दूसरी बात, जो कार्य हमारे दुख को हमारे बंधन को बढ़ाते हैं उसे भी कर्म कहते हैं। इसके विपरीत भगवान हर अवस्था में मुक्त रहते हैं, हर अवस्था में आनंदित रहते हैं। भगवान को बाध्य नहीं किया जा सकता कोई कार्य करने के लिए, इसलिए भगवान के कार्यों को लीला कहते हैं। भगवान अपने स्वेच्छा मात्र से कार्य करते हैं, हम बद्ध होकर कार्य करते हैं। भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो उससे दिव्य आनंद बढ़ता है, भगवान का और भक्त का। लेकिन हम जब कोई कार्य करते हैं इस दुनिया में रह के, तो इससे कष्ट ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए भगवान के कार्यों में और हमारे कार्यों में, हम सबके कार्यों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। भगवान के कार्यों में कोई भौतिक फल नहीं मिलता, भगवान को पुनर्जन्म आदि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान अपनी स्वेच्छा से भौतिक जगत में आते हैं, अपने लीला प्रदर्शित करते हैं और फिर से चले जाते हैं अपने धाम में। परंतु हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमें जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है। हम जब इस जन्म में होते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में हमें कौन से माता पिता मिलेंगे, हमें कहाँ जन्म मिलेगा, किस परिस्थिति में जन्म मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद जो हमारे कर्म हमें एक उपयुक्त स्थान में ले जाएंगे। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। ये गीता का उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैंने लाखों लाखों साल पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्टः परंतपः। इस प्रकार से परंपरागत ये ज्ञान चलते आया, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे हुआ कि कहीं ये ज्ञान लुप्त हो गया। स एवाय मया तेभ्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्। क्योंकि ये ज्ञान लुप्त हो गया है अर्जुन, ये परंपरा कहीं खंडित हो गई, इसलिए मैं पुनः प्रकट हो चुका हूँ हे अर्जुन, और मैं इस ज्ञान की स्थापना पुनर्स्थापना कर रहा हूँ ताकि ये परंपरा फिर से चलती रहे। और मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे मित्र हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा, अर्जुन को थोड़ा संशय हुआ कि अरे ये कैसे हो सकता है, कृष्ण तो मेरे मित्र हैं, हम दोनों एक उम्र के हैं, हमारा जन्म तो साथ साथ ही हुआ था, और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि लाखों वर्ष पूर्व मैंने विवस्वान को ये उपदेश दिया था। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को ये सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, हमारी आयु तो 125 वर्ष की है, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर थे तो दोनों की आयु 125 वर्ष की थी, परंतु श्री कृष्ण केवल एक तरुण के समान लग रहे थे, एक नवयुवक के समान लग रहे थे। आपने कभी भगवान श्री कृष्ण का चित्र बुढ़ापे में नहीं देखा होगा, बूढ़े कृष्ण तक की तस्वीर कभी देखी है आपने कि कृष्ण के सफेद बाल हैं या उनकी उनका पीठ जो है झुका हुआ है या छड़ी लेकर वो चल रहे हैं, लंबी सफेद दाढ़ी है, कभी ऐसे देखा है आपने कृष्ण को? नहीं, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। हालांकि उनकी आयु 125 वर्ष की थी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, फिर भी वो एक नव युवक के समान ही प्रतीत हो रहे थे। तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हमारी उम्र तो केवल 125 वर्ष की है और आप कहते हैं कि लाखों वर्ष पहले आपने सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था, ये मैं कैसे समझ सकता हूं? ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। समझ लीजिए, आप में से कोई अभी IIT में पढ़ाई करते हैं, आपकी उम्र तो 25-30 से ज्यादा तो नहीं होगी, और अगर आप कहेंगे कि मैंने बादशाह अकबर से 500 वर्ष पहले बात की थी, तो अरे ये कैसे संभव हो सकता है? कोई पूछेगा ना कि आपकी उम्र है 25 और आप कह रहे हो 500 वर्ष पहले आपने अकबर से बात की थी, ये कैसे हो सकता है? तो उसी प्रकार से अर्जुन ने भी ऐसे ही श्री कृष्ण से पूछा। तो अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जान लो बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारे और मेरे हे अर्जुन बहूनि जन्म, अनेक जन्म हो चुके हैं, तुमने भी अनेक जन्म लिए हैं, मैंने भी अनेक जन्म लिए हैं। तान अहम सर्ववेत्था, मैं सारे इन मेरे पूर्व जन्मों को जानता हूं, तुम्हारे पूर्व जन्मों को भी मैं जानता हूं, लेकिन तुम अपने ही पूर्व जन्मों को नहीं जानते हो। न त्वं वेत्थ परंतप, तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं। तो ऐसा क्यों है कि श्री कृष्ण जानते हैं और अर्जुन नहीं जानते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण परम सत्य है, श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण का शरीर हमारे शरीर के जैसे नहीं है। हमारा शरीर जो है ये जड़ पदार्थों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आठ पदार्थ, इन आठ पदार्थों से हमारा शरीर बना हुआ है। ये भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक नहीं है। आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, और मृत्यु के समय ये आध्यात्मिक आत्मा इस भौतिक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को स्वीकार करता है, और ऐसे चक्र चलता है। तो जब हम ये भौतिक शरीर बदलते हैं तो हम हमारे पूर्व जन्म को, हमारे पिछले शरीर को भूल जाते हैं। तो हम भूलते क्यों हैं? हम सबके अनेक जन्म हुए हैं, पिछले जन्म में हम कौन थे हमें क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमने शरीर बदल दिया है। शरीर बदलने के कारण हमारी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में हम कहां थे, क्या कर रहे थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण, उनका शरीर भौतिक नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक है। सच्चित आनंद विग्रह, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूरी तरह से दिव्य है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है, नश्वर नहीं है भगवान का शरीर, अमर है भगवान का शरीर। हमारा शरीर तो नश्वर है, 30-40-60-70-80 साल तक ये शरीर टिकेगा, उसके बाद में शरीर का नाश हो जाएगा, क्योंकि ये भौतिक है, जड़ पदार्थों से बना हुआ है। परंतु भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य होने के कारण कभी भी इसका नाश नहीं होता है, और जब शरीर का नाश नहीं होता तो फिर शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब शरीर भगवान बदलते नहीं है तो भूलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए भगवान की स्मृति शक्ति परिपूर्ण है। करोड़ों करोड़ों साल पहले भगवान ने क्या किया था भगवान को याद है, लेकिन दो क्षण पहले हमने क्या किया था हमें याद नहीं आता, पांच मिनट पहले हमने चाबी कहाँ रखी थी हम भूल जाते हैं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हम पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, क्योंकि इस जीवन में भी हमारा शरीर बदलते जा रहा है। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा शरीर कितना छोटा था, अब शरीर बढ़ते जा रहा है और बुढ़ापे में शरीर तो और भी अलग हो जाएगा। तो इस जीवन में भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस जीवन में भी जीते जी हमारे शरीर बदलते जा रहा है, इसलिए विस्मृति हो जाती है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर, और इसके कारण भगवान कृष्ण की स्मृति शक्ति सदैव बनी रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि लाखों साल पहले मैंने विवस्वान को ये उपदेश दिया था, तुम भूल गए थे लेकिन मैं भूला नहीं है अर्जुन। तो ये है भगवान का विशेष स्थान। तो भगवान अपने आध्यात्मिक शरीर में, अपने धाम से यहां भौतिक जगत में समय समय पर प्रकट होते हैं। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति सामधिष्ठाय संभवामि आत्मायया। वो कहते हैं कि अजह अपि, हालांकि मैं अजन्मा हूं फिर भी मैं प्रकट हो जाता हूं। अजह अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, और हालांकि मैं सारे प्राणियों का स्वामी हूं, हालांकि मैं परम सत्य हूं, फिर भी समय समय पर मैं इस भौतिक जगत में प्रकट हो जाता हूं। मेरे अंतरंगा शक्ति द्वारा, मेरे आध्यात्मिक मूल शरीर में प्रकट होता हूं। तो जब भगवान यहां पर अवतार लेते हैं तो उसी शरीर में आते हैं जिस शरीर में वो अपने धाम में रहते हैं, उनको शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन भगवान जब मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो हम जैसे ही दिखते हैं, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, खाना पीना सब हमारे जैसे रहता है, तो हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण भी हमारे जैसे ही कोई साधारण व्यक्ति है। परंतु गीता में भगवान कहते हैं कि केवल अज्ञानी लोग ऐसे समझते हैं। अव जानंती माम मूढ़ मानुषी तरुमाश्रितम परम भाव मजानम तो मम भूत महेश्वरम। वो कहते हैं कि जो लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वो मुझ भगवान को नहीं जानते, अव जानंती, मुझे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, जबकि मैं भगवान हूं, परम सत्य हूं। जब कोई राजा किसी कारागार में जाता है, कोई जेल में जाता है परीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए कि सब कैसे चल रहा है राज्य में, जेल में रहने वाले कैदी भी ठीक ठाक है ना, और जेल के जो अधिकारी हैं क्या वो ठीक ठाक अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देखने के लिए जब राजा जेल के अंदर चले जाते हैं तो हो सकता है कि कोई अज्ञानी कैदी सोचे कि ये राजा भी हमारे जैसे ही कोई कैदी है। वो नहीं जानता कि ये राजा कैदी नहीं है, हालांकि वो जेल के अंदर आया है, वो स्वेच्छा से जेल के अंदर आया है और स्वेच्छा से ही बाहर जाएगा। लेकिन जो कैदी होता है वो अपने इच्छा से जेल में नहीं आया है, जबरदस्ती जेल में भर्ती कराया गया है। जब कोई पुलिस उसे वो गुनाह करता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है, जबरदस्ती जेल में डालती है और जबरदस्ती उसे वहां परिश्रम करना पड़ता है, दंड स्वीकार करना पड़ता है, हालांकि वो कैदी बाहर जाना चाहता है, नहीं जा सकता। लेकिन राजा के लिए ऐसे नहीं है, राजा जब चाहे जब आ सकता है, जब चाहे तब जा सकता है, बल्कि राजा के नियंत्रण में ही सब कुछ चल रहा है, राजा के आदेशानुसार ये सारा जेल चलता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण समय समय पर यहां पर अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर अपने भक्तों के साथ में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये भगवान स्वेच्छा से करते हैं, अपने दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए करते हैं, भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा देने के लिए करते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए करते हैं, धर्म की संस्थापना करने के लिए करते हैं। लेकिन कोई भगवान को जबरदस्ती करके नहीं बुला सकता कि आपको आना ही होगा, ये संभव नहीं है। तो जब भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर आते हैं और कोई भी कार्य करते हैं, भले वो असुरों का विनाश की न हो या भक्तों की रक्षा की न हो या किसी और प्रकार की लीला भी क्यों न हो, भगवान इन सारे कार्यों को स्वेच्छा से करते हैं, बाध्य होकर नहीं। और ऐसे कार्यों से भगवान दिव्य आनंद की वृद्धि करते हैं, दिव्य आनंद को बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान के कार्यों को लीला कहा गया है। और क्योंकि भगवान कभी शरीर बदलते नहीं है, इसलिए उनका जन्म भी हमारे जन्म की तरह नहीं है। हम सबका जब जन्म हुआ था तब हम रोते रोते बाहर आए थे, याद है आपको? याद है? नहीं याद है ना, भूल गए हैं। इसी जन्म की बात हम भूल जाते हैं, हम भूल गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमारा जन्म हुआ ही नहीं? जन्म तो हुआ है ना, इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पर। परंतु हमारा शरीर अलग था, शरीर काफी परिवर्तित हो गया, इसलिए इस समय हम भूल चुके हैं। हम जब प्रकट हुए रोते हुए आए, लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब माता देवकी से प्रकट हुए मथुरा के जेल में, तो हंसते हुए आए, हसमुख चेहरे से आए। तो ये साबित करता है कि श्री कृष्ण भगवान है, हंसते हुए आए और सबको दिव्य आनंद प्रदान किया। हम लोग क्या करते हैं, रोते हुए आते हैं, जाते समय भी रोते रोते ही जाते हैं कि अरे हमें और यहाँ रहना है और बहुत कुछ करना है, इतनी हमारी योजनाएं हैं। तो आते हुए रोते हैं, जाते हुए रोते हैं, बीच में भी रोते रहते हैं, अरे हमारे पास ये नहीं है, हमें वो चाहिए, ये समस्या है, ये समस्या है ना। तो कैसे मुक्त अवस्था कहला सकती है? मुक्त नहीं है, बद्ध है, हम घोर अंधकार में हैं, अज्ञान के अंधकार में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर अपने कार्यों को प्रकट करते हैं और सबका मन उनकी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये है भगवान की लीला। भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, जैसे राजा को जेल के अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कैदियों के ऊपर करुणा करके वो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान हम सब के ऊपर कृपा बरसाने के लिए यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार से एक साधारण बच्चा जो होता है अपनी तोतली आवाज में बोलता है तो सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी घर में अगर छोटा बच्चा है तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़े होते जाता है तो सारे परिवार के लोग, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, सब लोग बच्चों की कथा करते रहते हैं, शिशु कथा चलती रहती है। आज बच्चे ने रिक्शा पहली बार कहा, आज बच्चे ने आज अक्षर लिखना शुरू कर दिया, आज बच्चे ने ऐसे किया वैसे किया। तो लोगों को बहुत आनंद आता है ऐसे छोटे बच्चों की कथा सुनने में। तो कल्पना कीजिए जब भगवान ऐसे बच्चे बन जाएंगे तो उनके कार्य कितने आकर्षक होंगे और कितना दिव्य आनंद वृंदावन के निवासियों को मिला होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उद्गम हैं, इनके स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब एक स्थान में एक साधारण बच्चे के समान प्रकट होकर एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हैं, जहाँ की उनको करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी करते हैं तो ये लीला है और ऐसे कार्य सभी को आकर्षित करते हैं। ये है वृंदावन की विशेषता कि यहाँ जो कार्य भगवान करते हैं वो वास्तव में ऐसे कार्य नहीं है जो कि लोग सोचते हैं कि भगवान करते हैं। लोग क्या सोचते हैं भगवान के बारे में? हाँ, भगवान तो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि का विनाश किया, सृष्टि का पालन करते हैं, वो लोगों को दंड देते हैं, तो भगवान के बारे में लोगों की धारणा ऐसे रहती है। लेकिन आप किसी से कहिए क्या भगवान मक्खन चोरी कर सकते हैं? बोले मेरे ऐसे थोड़ी हो सकता है। वो कहेंगे भगवान अपने माँ से डांट खा सकते हैं? बोले ये कैसे भगवान हुए, किसी को डांट खाना पड़े तो भगवान हो गए? लेकिन वृंदावन की यह विशेषता है, वृंदावन में भगवान आके ऐसे ही कार्य करते हैं और वृंदावन में भगवान को भगवान होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक साधारण मनुष्य की तरह वो कार्य करते हैं। माखन चोरी करते हैं, गायों को चराने ले जाते हैं, अन्य ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, कभी कभी अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, जैसे वो गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं, कभी कभी बड़े बड़े असुरों का वध करते हैं। एक बार उन्होंने दावानल को निगल लिया, जंगल में आग लग गई थी तो ग्वाल बालों ने कहा कि कृष्ण हमें हमारी रक्षा करो, तो कृष्ण ने कहा कि आंखें बंद कर लो। ग्वाल बालों ने आंखें बंद कर ली और भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोल लिया, अग्नि को निगल लिया एक क्षण में। तो हालांकि श्री कृष्ण एक साधारण बच्चे या शिशु की तरह कार्य करते हैं वृंदावन में, फिर भी उनकी शक्ति उतनी ही अपार रहती है। शक्ति में, बुद्धि में, योग्यता में कोई घटन नहीं होता, तो इसलिए श्री कृष्ण का विशेष स्थान है ये वृंदावन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मधुर से मधुर लीलाओं का प्रदर्शन इस भूमि में हुआ था। तो ये है वृंदावन का महत्व। अन्य अनेक स्थान हैं भगवान के, तीर्थ स्थान हैं, धाम हैं, तिरुपति है जहां भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर या बालाजी के रूप में विराजमान है, परंतु तिरुपति में आपने ये नहीं सुना होगा कि बालाजी अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं या बालाजी ने कुछ चोरी की या बालाजी ने अपने माँ से डांट खा ली। लेकिन ऐसी सब चीजें वृंदावन में सुनने में आती हैं, इसलिए वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय निवास स्थान है। जैसे हम पहले कह चुके हैं भगवान का निवास स्थान तो अणु भी है, हर जगह भगवान विराजमान है, फिर भी जितने भी अनगिनत निवास स्थान भगवान के हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ वृंदावन है, क्योंकि ये वृंदावन धाम में रहते हुए भगवान को सबसे बड़ा आनंद आता है। यहाँ श्री कृष्ण अपने आप को भगवान नहीं समझते हैं, एक ग्वाल बाल समझते हैं और एक ग्वाल बाल की भूमिका को निभाते हुए वो अपने भक्तों के साथ दिव्य आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो आज हम सब इसी वृंदावन धाम में बैठे हैं, इसी भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व ऐसी सुंदर लीलाओं का प्रदर्शन किया था और आज भी कर रहे हैं, परंतु आज उनको देखने की शक्ति हमारी आंखों में नहीं है। इन आंखों से हम नहीं देख सकते, परंतु हम दिव्य आंखों से देख सकते हैं। दिव्य आंखें कैसे प्राप्त हो सकती हैं? चश्मे के दुकान में जाते हैं? नहीं, दिव्य आंखें प्राप्त हो सकती हैं श्रवण करने से, सुनने से। जब भक्तों के संग में हम आते हैं और भगवान की कथाएं सुनते हैं, गीता भागवत में जो भगवान ने उपदेश दिए हैं उनको सुनते हैं, तो धीरे 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 से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और वो दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होने लगती है और धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि वास्तव में ये वृंदावन स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। दिखने में तो एक साधारण स्थान दिखता है, यहाँ भी पेड़ हैं, इमारतें हैं, यहाँ भी रिक्शा वाले हैं, यहाँ भी चोर हैं, यहाँ भी पशु हैं, बंदर हैं, ऐनक चोरी कर लेते हैं, गर्मी है, ठंडी है, धूल है, तो हमें लगता है कि ये वृंदावन भी एक दूसरे शहर के समान ही है, इसमें क्या खूबी है, क्या विशेषता है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि असली वृंदावन को देखने के लिए हमें वो दिव्य दृष्टि चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे इस धरातल पर, दुर्योधन जैसे असुर वृत्ति के लोगों ने श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य ही समझा, क्योंकि श्री कृष्ण का रहन सहन, बोलचाल मनुष्य की तरह था। तो दुर्योधन समझ नहीं पाया कि ये भगवान की लीला है, वास्तव में भगवान एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है, परम सत्य है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं, इसलिए अज्ञानी लोग उन्हें भी एक साधारण मनुष्य समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से वृंदावन ये अन्य शहरों की तरह दिखाई पड़ता है बाहरी दृष्टि से, इसलिए अज्ञानी लोग सोचते हैं कि ये शहर भी दूसरे शहरों की तरह ही है, साधारण है, परंतु ऐसा नहीं है। ये स्थान एक धाम है जहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, जहां उन्होंने सुंदर लीलाएं की और जहां के अप्रकट रूप में भगवान अभी भी विराजमान हैं और अपनी लीलाएं कर रहे हैं, परंतु हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के संग में आके हम बार बार जब सुनेंगे तो वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम ओवम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनः। हे अर्जुन, जो तत्वतः मेरे जन्म और मेरे कर्म को दिव्य जानता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के मेरे पास चले आता है, अर्जुन, मेरे धाम में। तो भगवान के भक्तों के संग में आकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना और विभिन्न रूपों से भगवान की सेवा करना, ऐसे सब करने से हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति की भावना बढ़ जाती है। और जब शुद्ध प्रेम की अवस्था को हम प्राप्त करेंगे, तब जब हमारी मृत्यु होगी, जब आत्मा को शरीर छोड़ने का समय आएगा, तो आत्मा फिर से लौट के एक दूसरे भौतिक शरीर को नहीं प्राप्त करेगा, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा और आत्मा फिर भगवान श्री कृष्ण के पास वैकुंठ जगत में चले जाएगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। विशेष करके ये बताया गया है कि हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसका उल्लेख कलि संतरण उपनिषद में दिया हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का निरंतर नाम उच्चारण करने से बहुत ही जल्दी हम आध्यात्मिक जीवन प्रगति कर पाएंगे। जितने भी हृदय में हमारे अनर्थ हैं, बुरे चीजें हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो जाएगा। तो वृंदावन धाम में आकर जब हम ये भक्ति के कार्य करते हैं, तो हमें हजार गुना अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपका हर एक क्षण वृंदावन में बहुत ही मूल्यवान है। वृंदावन की हवा का सांस लेना, वृंदावन का जल का पान करना, वृंदावन के रज में बैठना, स्पर्श करना, इससे हमारे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ हर रज के कण को साधारण नहीं समझिए, यहाँ के हवा पानी को साधारण नहीं समझिए, यहाँ के पशु पक्षियों को साधारण नहीं समझिए, पेड़ को भी साधारण नहीं समझिए, ये साक्षात भगवान का धाम है। और श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक अगर आपने इस भाव में वृंदावन को देखने का प्रयास किया तो शीघ्र ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जब जीवन का अंत हो जाएगा तो भगवान हमें सीधे उनके धाम में वापस ले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रश्न ये है कि ऐसे बताया गया था प्रवचन के दौरान कि हम पूर्व जन्म को याद नहीं कर पाते हैं इस कारण से कि हम शरीर बदलते हैं। शरीर बदलना मतलब भूल जाना। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग हैं जो अपने पूर्व जन्म को याद कर सकते हैं? इसके लिए कारण भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वो कहते हैं, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति आती है। तो किसी व्यक्ति को भगवान अगर चाहें तो परमात्मा के रूप में स्थित होकर वो अंदर से अपने पूर्व जन्म की स्मृति दिला सकते हैं, भले भगवान की इच्छा के अनुसार। परंतु ये नियम नहीं है और ये भी आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो वो बहुत भाग्यशाली है, ऐसा नहीं है। बल्कि याद नहीं होना ही अच्छा है। नहीं तो क्या होगा, कितनी भ्रांति होगी, कितना कष्ट होगा। इस जन्म में आपका एक नाम है, पिछले जन्म में कोई आप और थे, आप सोचें भाई मैं कौन हूँ, ये हूँ या वो हूँ, है ना। और अगर पिछले जन्म में हम मनुष्य नहीं थे तो फिर क्या होगा। इस एक जीवन के कष्ट काफी है ना हमारे लिए। अब सारे पूर्व जन्म भी याद हो जाते तो सारे इतने जन्मों का कष्ट याद हो जाता, इतना कष्ट होता, कैसे जी पाते हैं हम। इसलिए भगवान कृपा करके हमें भुला देते हैं हमारे पूर्व जन्म। तो बिरला ही ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनको भगवान ऐसी स्मृति दे देते हैं कोई कारण से। दूसरा प्रश्न ये है कि हालांकि हमारा ये शरीर तो रह जाता है यहीं पर मृत्यु के समय, पर सूक्ष्म शरीर तो आत्मा को साथ में लेकर दूसरे शरीर में जाता है। तो जब सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है तो फिर भी विस्मृति क्यों होती है? क्योंकि स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है इसीलिए। और जैसे जैसे हमारे स्थूल शरीर होते हैं वैसे वैसे हमें बुद्धि और हमारी इच्छाएं होती हैं। समझ लीजिए कि एक व्यक्ति मनुष्य शरीर में है और उसने बहुत पाप कर लिए, अगले जन्म में उसे कुत्ते का शरीर मिल जाता है। तो जब मनुष्य शरीर में था तो वो रसगुल्ला खाना बहुत पसंद करता था, लेकिन जब कुत्ते का शरीर मिल गया तो वो हड्डी खाना पसंद करता है। जैसे उसे स्थूल शरीर प्राप्त होता है उसी प्रकार से उसकी इच्छाएं भी उसी प्रकार की बन जाती हैं। जब कुत्ते के शरीर में आत्मा होता है तो भौंकता है, मनुष्य शरीर में होता है तो इंसान की तरह बात करता है। तो जैसे स्थूल शरीर होता है वैसे वैसे वो कार्य करता है, वैसे उसकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। स्मृति विलुप्त क्यों होती है? क्योंकि भगवान जो हृदय में स्थित हैं, वो स्मृति हमें नहीं दिलाना चाहते हैं पूर्व जन्म का, इस कारण से कि हमें इस स्थूल शरीर का भोग करना है अमुक प्रकार से। अगर कुत्ते को याद रहता कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य था, तो वो कुत्ते के जैसे घी कैसे सकता है? अपने आप को कुत्ता मनुष्य समझेगा तो वो कुत्ते का कार्य कैसे करेगा? संभव नहीं है। इसलिए हालांकि सूक्ष्म शरीर तो है, फिर भी भगवान विस्मृति दिलाते हैं ताकि वो इस वर्तमान काल का जो स्थूल शरीर है वो उसका भोग उचित प्रकार से करे, जैसे कि उसकी इच्छा थी। उसकी इच्छा थी इसलिए ऐसे शरीर उसे प्राप्त हुआ, वो इस प्रकार से भोग करना चाहता था इसलिए ऐसे शरीर उसे मिला। जब वो शरीर मिला है, अगर उसे पिछले शरीर की स्मृति होगी तो इस शरीर का भोग नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवान विस्मृति दिला देते हैं। तो हालांकि सूक्ष्म शरीर रहता है वही, फिर भी भगवान विस्मृति दिला देते हैं। ठीक है, परम सत्य का क्या अर्थ है? परम सत्य वो हैं जिनके ऊपर अन्य सत्य निर्भर हैं। परम सत्य क्या वो का अर्थ है कि वो सत्य जो अपने ऊपर ही निर्भर है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, जो अमर है, जो शाश्वत है, जो परिवर्तनशील कभी भी नहीं है, जो दिव्य आनंद से पूर्ण है, दिव्य ज्ञान से पूर्ण है, वो है परम सत्य और वो है श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूते मणिगणाइव, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है हे अर्जुन, बल्कि सब कुछ मुझ पर आधारित है। जिस प्रकार से मोतियों धागे के ऊपर आधारित रहती हैं मोतियों की माला, तो भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है और अन्य सत्य उनके ऊपर आधारित होते हैं। ठीक, और किसी को? हाँ जी। क्या सूक्ष्म शरीर हमारा जो है वो अमर है? बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म शरीर भी बदलते रहता है, जैसे जैसे हमारे विचार बदलते हैं वैसे वैसे सूक्ष्म शरीर भी बदलते रहता है, और अंततः जब आत्मा की मुक्ति हो जाती है इस जन्म मृत्यु के चक्र से, तब सूक्ष्म शरीर का भी नाश होता है। स्थूल शरीर का नाश तो हर एक जन्म के बाद होता है, लेकिन स्थूल शरीर का पूरी तरह से नाश मुक्ति के समय हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी से? हाँ, प्रश्न ये है कि ऐसे कहा गया है कि भौतिक जगत में हमें जबरदस्ती आना पड़ता है, लेकिन हमने ये सुना है कि हम अपनी इच्छा से भौतिक जगत में आए थे। हाँ, ये पहली बार की बात सही है। पहली बार जब हम यहाँ आए तो अपनी इच्छा से आए, लेकिन जब इच्छा करी हमने उसके बाद हम फेंक दिए गए। हमने कोई गलत इच्छा की और उस गलत इच्छा करने की वजह से हमें भेजा गया। जैसे किसी गुनहगार ने अपनी इच्छा से वो गुनह किया, लेकिन एक बार जब उसने गुनह कर लिया तब उसके हाथ में नहीं, तब उसे पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगी जेल में। ठीक उसी प्रकार आत्मा ने कोई गलत विचार, कोई गलत इच्छा रखी मन में स्वेच्छा, लेकिन एक बार ये इच्छा आ गई तो फिर भगवान की माया शक्ति उसे जबरदस्ती भौतिक संसार में फेंक देती है। ठीक है, तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, आपको यहाँ श्री वृंदावन धाम आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। यहाँ वृंदावन में आप अधिक से अधिक यहाँ भक्ति कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, नाम संकीर्तन में शामिल होइए, भक्तों के संग कथा सुनिए, दर्शन कीजिए जगह जगह भगवान के लीला स्थलों का, और इस तरह से इस जीवन के सफलता के लिए आप तैयारी कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, कृष्णा बीज। प्रश्न यह है कि जब हम माला करते हैं तो बीच वाला जो मन, बीच वाले मन की को हम पार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये एक गुरु या कृष्ण को लांघ के नहीं जाना चाहिए, एक मर्यादा व्यतिक्रमण होता है। किसी सम्माननीय वस्तु या व्यक्ति को हम लांघ के नहीं जाते हैं, है ना? तो इसलिए ये गुरु और भगवान उसका प्रतीक है, ये बीच बीच का जो मन का है, इसलिए हम घूम के जाते हैं। फिर इसे मेरु मन का भी कहते हैं, मेरु सुमेरु पर्वत। हाँ, अगर कोई मुक्त जीव फिर से यहां भौतिक जगत में आना चाहे तो क्या वो आ सकता है? साधारणतः एक मुक्त जीव ऐसी इच्छा नहीं करेगा। तो किस प्रकार के जीव यहां आए हैं? जो तट पे हैं, न इधर के न उधर के। हम सब तटस्था शक्ति हैं भगवान की। हम आध्यात्मिक और भौतिक जगत के तट में स्थित थे और तट से हमने चयन किया कि हमें यहाँ आना है और यहाँ पर आए हैं। एक बार व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाता है तो फिर उसे पुनः यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और नहीं ऐसी इच्छा उसके मन में आएगी। ठीक है, तो 5 मिनट कीर्तन करते हैं और फिर आपका अगला कार्यक्रम होगा। आगे क्या करेंगे आप अभी? नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम नमस्ते सारस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकायणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप में से जो भक्त अभी भगवान का नाम का जप नहीं कर रहे हैं, कृपया आप शुरू कीजिए आज से। बहुत ही पावन भूमि में आप आए हैं और श्री राधाष्टमी के उत्सव के समय ही आए हैं, तो अच्छा समय है, अच्छी जगह है आपका एक नया जीवन शुरू करने के लिए भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। तो कृपया आप भगवान के नाम का जप शुरू कीजिए। यह माला भी उपलब्ध है और इस महामंत्र का आश्रय लेके अपने जीवन को सुखी बनाइए, दिव्य आनंद की प्राप्ति कीजिए, मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा, हरे प्रश्न ये है कि हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? हरे भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है और कृष्ण मतलब कृष्ण। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो हम वास्तव में राधा कृष्ण का नाम लेते हैं और राधा कृष्ण से हम तीव्र प्रार्थना करते हैं कि वो कृपया हमें उनके चरण कमलों में आश्रय प्रदान करें और उनकी दिव्य सेवा में सदैव स्थित रखें। ठीक है, हरे कृष्णा।